हाल हुआ आवाना। इस करारदाद पर उन्होंने जाकर अपने बाप से कहा, अब्बा जन क्या बात है, आप यूसुफ के मामले में हम पर भरोसा ही नहीं करते, हालांकि हम इसके सच्चे खैर ख्वाह हैं। देखिए प्लान क्या है, इरादे क्या है कत्ल के, और बाप को आके क्या कह रहे हैं, हम उसके खैर ख्वाह। अक्सर रिश्तेदारियों में ऐसे ही होता है, दिल में सांप लौट रहे होते हैं उनकी चीजों को देख के, और सामने आके कहते हैं भाभी बड़ी खुशी हुई, मुबारक हो आपको। फिर घर जाके कहते हैं कि देखो जरा रिश्तों में ये डिप्लोमेसी जो है ना, ये शैतान की तरफ से। कत्ल के इरादे हैं और जुबान पे कहते हैं हम आपके वेल विशर हैं, हम आपके बड़े खैर ख्वाह हैं, और ये डिफेंसिव हुए। आज भी कुछ बच्चे माँ बाप के साथ यही ट्रिक खेलना चाहते हैं, किस तरह से, वो कहते हैं बस आप तो मुझ पर भरोसा ही नहीं करती, आईपैड दिला दे, आईपैड नहीं आपको पता है बस मैं सही यूज नहीं करूंगा, दिस एंड दैट। अच्छा आप कहते हैं स्लीप ओवर, हाँ मुझे पता है आप तो मुझ पे इतमाद नहीं करेंगी। यानी जिसको आप कहते हैं ना कि ऊपर से लगाना इस बात पे कि माँ बाप प्रेशर में आके छोड़ दें, तो हजरत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप इन सारी बातों को सुन रहे हैं लेकिन आगे से कुछ नहीं बोल रहे। अब असल पॉइंट पे आते हैं, कल इसे हमारे साथ भेज दीजिए, कुछ चर चुग लेगा और खेल कूद से भी दिल बहलाएगा, हम इसकी हिफाजत को मौजूद है। देखिए कैसे हिफाजत करने वाले जो कत्ल के इरादे से लेके जा रहे हैं। बाप ने कहा तुम्हारे इसे ले जाना मुझे शाक गुजरता है और मुझे अंदेशा है कि कहीं से भेड़िया न फाड़ खाए जबकि तुम इससे गाफिल हो। उन्होंने जवाब दिया, वो अगर हमारे होते हुए इसे भेड़िए ने खा लिया जबकि हम एक जत्था हैं, तब तो हम बड़े ही निकम्मे हैं। आप नोट करें इन भाइयों का अपनी जमात पे बड़ा मान है, हम बहुत ज्यादा हैं, हम बहुत बड़े हैं, कहेंगे हमारे होते हुए एक भेड़िया इसको कैसे खा सकता है। और इसी तरह से इसरार करके जब वो इसे ले गए और उन्होंने तय कर लिया कि इसे एक अंधे कुएं में छोड़ दें, तो हमने यूसुफ को वही की कि एक वक्त आएगा जब तो इन लोगों को इनकी ये हरकत जताएगा, ये अपने फेल के नताइज से बेखबर है। यहां रुकिए, जिन हालात में सूरत यूसुफ नाजिल हो रही थी ना, अल्लाह के नबी के हालात बिल्कुल ऐसे थे। अखवाने यूसुफ का किरदार मक्का वाले अदा कर रहे थे, सगे भाई ना भी सही, चचा ताया फूफो के रिश्तेदार तो थे ही ना मक्का वाले। इधर ये हजरत यूसुफ के कत्ल की कोशिशें कर रहे हैं ना, तो उस वक्त मक्का वाले अल्लाह के नबी के कत्ल की कोशिशें कर रहे थे, और इधर इन्होंने सोचा चलो कत्ल नहीं करते तो इनको दया के किसी कुएं में डाल देते हैं, इसको इधर से निकाल दें। उधर मक्का वालों ने अल्लाह के नबी को जब निकालना चाहा तो आपने हिजरत की और गारे सौर में जाके पना ली। बहुत मुमासलतें थी, पूछा तो मक्का वालों ने, यहूद के कहने पे था ये सवाल लेकिन उनके ऊपर अपने ही खिलाफ पड़ गया। अल्लाह ताला उनको दिखा रहा है आईना कि कल यूसुफ के सगे भाइयों ने या सौतेले भाइयों ने जो मामला उनके साथ किया था, आज वही मामला तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ कर रहे हो और उनके कत्ल की कोशिशें कर रहे हो, और इस तरह के हालात करते करते चल पड़े और इस तरह से वो बाप को तैयार करके ले गए। खैर क्या हुआ, यूसुफ कुएं में, यहां से थोड़ी सी बात करूंगी हिकमत की। देखिए आप और मैं चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हिकमत मिले, चाहते हैं ना, और हम चाहते हैं कि वो इंटेलिजेंट हो। वही पांच लफ्ज याद रखे ना, हिकमत, फरासत, मामला फहमी, और इसी तरह से विजडम कह लीजिए आप उसको। इसके लिए आपको अपने बच्चों को एक्सपोज करना पड़ेगा। एक्सपोज क्या होता है, बहुत प्रोटेक्टेड जब हम किसी को रखते हैं ना, हाँ इसको कुछ ना हो, हाँ इसको कुछ ना, हवा ना लगे, गर्मी ना लगे, तो इंसान की रेजिस्टेंस खत्म होती है। इसको समझिए पीछे इसी कौम की हिस्ट्री के जब आदि थी कि 40 साल वो रहे तो उनकी नस्लें सख्त जान हो गई। आज मुसलमानों को अपने बच्चों को बहुत ज्यादा नरम और इतना भोला और ढीला ढाला और एमलेस बना के नहीं पालने की जरूरत, क्योंकि जिन बच्चों को आप बहुत ज्यादा उनकी केयर करते हैं ना, वो फिर किसी काम के नहीं रहते। इस वक्त ये भी एक हमारा प्रॉब्लम है कि हम अपने बच्चों को बड़ा नहीं बना रहे, फिर दूसरी बात है कि हम उनको छोटी छोटी चीजों में इतनी लग्जरीज दे देते हैं कि जब वो अमली जिंदगी में आते हैं तो रोते हैं। बच्चियां माँ बाप के घर में जिस तरह रहती हैं, वल्लाही मुझे आप में से तो किसी की नहीं अभी पता, इसलिए आप तो अपने ऊपर ले ही नहीं सकते, लेकिन जहां तक मैंने देखा है, कम अज कम मुझे तो उन माओं पर रहम आता है। हमने शुरू से यही देखा कि बचपन से बच्ची माँ के पीछे उसका कपड़ा पकड़ के फिरती है, माँ झाड़ू लगा रही तो वो झाड़ू लगा रही, वो आटा गूंद रही तो आटा गूंद रही है, वो रोटी बना रही वो उसको छोटा सा पेड़ा देती। बच्चियां बोल पने में 8-10 साल की होती भी खाना भी सीख लेती थी, घर की सफाई सीख लेती थी। 10 साल की बच्ची घर में हो तो माँ की दोस्त या रिश्तेदार आए तो क्या होता था, आपको सबको याद आएगा अपना वक्त, माँ का इशारा समझती थी बच्चियां और चाय बना के लिए करते थे कि नहीं। खुद हमने खुद ये कुछ किया हुआ है, हमें पता था कि अब माँ साथ बैठेगी और हम, और वो हाथ से इशारा करके यूं करके और वो करके बता देंगी ये बिस्किट है, ये चाय है, ये दो है, ये तीन है। यकीन कीजिए ऐसे ही होता था ना। कि उम्मत वसत कहाँ है, ये खत्म ही नहीं हो रही जब तक औरत को औरत और मर्द को मर्द बनाकर और बेटे को बेटा और बेटी को बेटी बना के नहीं पालेंगे, जब तक इनके रूल्स नहीं डिफाइन करेंगे, इनके रोल्स डिफाइन नहीं करेंगे, तब तक मुसलमानों के हाल नहीं बदलेंगे। आज बिल्कुल कहानी उलट। पहले होता था बेटी के बड़े होते उसकी शादी की फिक्र लगती थी, बेटे के बड़े होते उसकी जॉब की और काम की फिक्र लगती थी। आज बेटा हो के बेटी हो, दोनों की एक कैरियर की फिक्र लगती है, कर लेगी जाके। लड़कियों को जिस तरह से माएं पालती हैं, अल्लाह रहम करे, ऐसे लगता है कि घर तो बनना नहीं बनना, एक दफा इसको पहले दुनिया की तालीम दे दो, दे, लेकिन उनका औरतपन ना खत्म करें। नुकसान क्या होता है कि वो बच्चियां आने वाली जिंदगी के फिर तकाजे नहीं कबूल कर सकती, और वो सारे प्रॉब्लम जो हमने पीछे सूरत निसा में भी देखे, आगे भी जाके देखेंगे। तो लिहाजा बच्चों को उनके रोल्स के मुताबिक आप पालेंगे तो इंशाल्लाह फायदा होगा। फिर इसके बाद आप देखिए कि बाप नबी थे, याकूब नबी भी थे, और अल्लाह ताला ने उनको हिकमत बहुत दी थी, लेकिन अब देखिए कि आप अपने बच्चों की बातों में आ गए। जब कोई तकलीफ पहुंचनी होती है ना इंसान को, तो वो वाकई फिर मजबूरी में करे या दिल की खुशी से वो बात करे, लेकिन उसके मुंह से वो बात निकलती है। याकूब अलैहिस्सलाम ने भाइयों की बात सुनकर इजाजत दे दी, कहा ठीक है आगे पढ़ते हैं। बल्कि इस किस्से को पूरा पढ़ने के बाद ही बात करूं तो मुझे लगता है ज्यादा फायदा होगा, ताकि हमारी स्टोरी का टेम्पो ना लूज हो। फलम्मा ज़हबू बिही, अब सीन पलटता है, बाप से इजाजत ले ली, अब यूसुफ को लेके साथ चले गए। फलम्मा ज़हबू बिही वजमौ यजलूहु फी गयाबतिल जुब्बी, इसी तरह इसरार करके जब वो इसे लेके और उन्होंने तय कर लिया कि उसे एक अंधे कुएं में छोड़ देंगे, तो हमने यूसुफ को वही की कि एक वक्त आएगा जब आप इन लोगों को इनकी ये हरकतें बताएंगे और ये अपने फेल के नताइज से बेखबर हैं। यहां तक हमने पढ़ा था। यहां एक बात नोट कीजिए, बजाहर यूसुफ हालात के उतार चढ़ाव का शिकार हुए और कुएं में गिरा दिए गए, वहां भी अल्लाह उनके पास वही भेज के उनके दिलों को इत्मीनान कर रहा। आज भी सच्चे ईमान की ये कलामत है, बड़ी से बड़ी मुश्किल, एडवर्स कंडीशन, क्लेमिटी आ जाए, आपका दिल बड़ा मुतमईन होता है, और ये चीज बंदे के अंदर हिलम लाती है। आप अब दिन ब दिन दीन में आगे आते जा रहे हैं ना, एक दफा पढ़ा, दूसरी दफा पढ़ा, हर एक अपने अपने लेवल को देख, दिन ब दिन आपके अंदर ठहराव आना चाहिए। पैनिक क्रिएट कर देना, घबरा जाना, ये नहीं वो नहीं, ये इस चीज का नतीजा है कि हिकमत नहीं है। हिकमत और फहम और फरासत आता ही तब है जब बंदा मुश्किल हालात को पी जाए। सोचिए कि यूसुफ की तरह हमें हमारे बहन भाई कुएं में फेंकाएं, हम तो रो रो के आसमान सर पे उठाते, लेकिन जरा देखिए आगे क्या होगा। भाई उनको छोड़ के किधर जाते हैं, घर वापस गए। शाम को वो रोते पीटते अपने बाप के पास आए और कहने लगे, अब्बा जान हम दौड़ का मुकाबला करने लग गए और यूसुफ को हमने अपने सामान के पास छोड़ दिया था कि इतने में भेड़िया आकर उसे खा गया। देखिए कितने ना समझ है, बाप ने चूंकि भेड़िए का लफ्ज बोला तो इन्होंने भी भेड़िए बोल दिया, शेर ही बोल देते। यहां से उलमा कहते हैं कभी लोगों को लूप होल नहीं देना चाहिए। आप कहेंगे वो कैसे होता है, मैं आपको बताती हूँ। आपका बच्चा बेचारा 6 7 8 साल का स्कूल से बस से उतर के अंदर आया, अब आपने उसका चेहरा देखा, सर में दर्द हो रहा है, बस उसने बहाना बना लेना, अम्मी मैं ट्यूशन पे नहीं जा रहा क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा है। जो जुमला आप बोलेंगी ना वो वही बोलेगा। कभी लोगों को ये जुमले ना सिखाएं, क्योंकि बाप ने कह दिया था कि भेड़िया ना खा जाए, तो उन्होंने कहना है हाँ अब्बा देखा जिस बात का आपको डर था वही हुआ, तो कहने लगे भेड़िया खा गया। आप वैसे हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे, ये झूठे शख्स की अलामत होती है कि उसको खुद भी चूंकि यकीन नहीं होता कि मैं सच बोल रहा हूं, तो वो समझदार दूसरा भी नहीं करेंगे। चाहे हम सच्चे ही हों और वो यूसुफ के कमीज पर झूठ मूठ का खून लगा कर ले आए थे, ये सुनकर इनके बाप ने कहा बल्कि तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़े काम को आसान बना दिया। अच्छा सब्र करूंगा और बखूबी सब्र करूंगा। इमेजिन कीजिए अपने ऊपर लें, आपका बेटा आपकी छोटी सी बच्ची को बाहर खेलने के लिए ले जाए और झूले पे छोड़कर कहीं चला जाए और वो गिर जाए और उसको चोट लग जाए, फिर आप अपने उस यंग बेटे का क्या हल करेंगी। शक्ल ना दिखाना, पीछे हो जाओ, बात नहीं करूं। याकूब अलैहि सलाम की फरासत देखिए, ये नहीं कहा शक्ल नहीं दिखाना, ये नहीं कहना क्या हुआ, कतई ताल्लुक ही नहीं की, आंख है चले जाओ भाग जाओ, 911 नहीं कॉल कर दिया, पुलिस को नहीं बुला लिया, बल्कि सबको सिखा दिया बिगड़ी हुई औलादों से कैसे मामला करें। याकूब समझ गए थे कि बेटे गड़बड़ करके आया, लेकिन उनको शो नहीं करने दिया। बस ये कह दिया तुम्हारे नफ्स ने काम को बिगाड़ दिया। कभी भी बच्चों में कोई खराबी देखे ना तो एकदम आप उनको शर्मिंदा ना करें, फौरन झूठ बोल देंगे। आप समझ गई हैं ये गलत कह रहे हैं, ये झूठ बोले, ये स्कूल से कहीं चली गई थी लेकिन ये मुझे नहीं बता रही। चुप करके पी जाए, खामोश, आने दे उसको घर, फिर मुनासिब वक्त का इंतजार करें जब उसको आपकी जरूरत है, फिर चाहे डायरेक्ट पूछ लें, बेटा सच सच बता दो किधर गई थी। हो सकता है आपको कॉलेज से स्कूल से फोन आ गया, हो सकता है आपकी किसी दोस्त ने उसको होटल में किसी के साथ बैठे देख ही लिया, आपको सब पता है। सब्र कीजिए, जब हम हाइपर होके एकदम बरस पड़ते हैं ना तो अगले की फिर जुबान खुलती, फिर वो आगे से चीख के उनके पास एक बेस्ट वे है कि चीखो चलाओ यल करो और ऊपर जाके कमरा बंद करके बैठ दो और मैं नहीं खाना खा रही। अब माँ पहले तो चीखी, बाद में आधे घंटे में ट्रे लगा के नौके खा लो ना मेरी बच्ची, भूखी ना रो, बिल्कुल रॉन्ग तरीका है। आप पहले सब्र करें, तहकीक करें, आपने कुछ देख लिया बच्चों के पास, उनकी किताबों में देख लिया, फोन पे देख लिया, सब्र सब्र हेल्म, इसके साथ हिकमत आती है। और इस वक्त उम्मत को बींग अ नेशन बहुत जरूरत है हिल्म की। छोटी सी कोई बात करता है आपको जलाने और करने, वो चाहते हैं कि मुसलमान भड़के, उनको क्या लगे आपके नबी से, वो सिर्फ आपको भड़काना चाहते हैं, आप भड़क उठते हैं, उनका काम हो गया। आप खामोश नहीं कहते, कहते तो कहते रहो हमारा नबी तो ऐसा नहीं था, कुछ भी नहीं होगा, इस फाइन, वो आपकी बात मान लेंगे। जब हम गुस्से में आते हैं ना तो दूसरे को मौका देते हैं वो हमें और गुस्सा दिलाए। कल एक किसी ने एक तस्वीर भेजी तो उसमें दुनिया का कोई जगह जहां उन्होंने बड़े बड़े फेमस लोगों के नाम नीचे स्टार्स की सूरत में लिखे हुए, तो कहते कि मोहम्मद अली बॉक्सर जो थे उनको भी ऑफर हुई थी कि आपका नाम भी हम लिखेंगे, तो उन्होंने कहा मैं अपना नाम लिखने की इजाजत सिर्फ इस सूरत में दूंगा कि जमीन पे नहीं सितारा बनाओगे क्योंकि मेरे नाम के अंदर दो बड़ी शख्सियात का नाम है, मोहम्मद और अली, मैं देता हूं इजाजत लेकिन मेरा नाम तुमने दीवार पे लगाना है शीशे पे। तो उन्होंने कहा मैं एक्सेप्ट है, और उन्होंने पिक्चर थी कि सबके नाम नीचे जमीन पे और मोहम्मद अली का नाम शीशे पे एक बड़ा सा लिखा हुआ। यकीन तो पैदा कीजिए, जब आप पहले ही रो रहे हैं तो अगला तो आपको और रुलाएगा। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेसब्री नहीं की, कतअ ताल्लुकी नहीं की, और यहां से ये सारी चीजें मैं समझ आती हैं कि औलाद के गम और शिकवे जो होते हैं ना वो किसी इंसान को भी नहीं बताने चाहिए। इधर से उनसे बात सुनकर भागे और झूठ मूठ का खून लगाए, यहां तक रिवायत में आता है कि ये कैसा मुहज्जब किस्म का एटिकेटेड किस्म का भेड़िया था कि जो इस कमीज के अंदर से पूरे यूसुफ को खा गया और कमीज नहीं फाड़ी, कमीज फाड़नी भूल गए, झूठ के पांव नहीं होते ना। तो याकूब अलैहिस्सलाम को समझ आ गया था कि बेटा मरा नहीं है, कमीज उतार के किसी भेड़िए को जिबा करके उसका खून लगा के ले आए, और याकूब मुतमईन थे कि मेरा यूसुफ मुतमईन है, इसलिए अल्लाह ताला के ऊपर राजी रहे। उधर से तो हटे और उसके बाद देखिए क्या कहा, फसब्रुन जमील, बस मैं तो सब्र करूंगा और बहुत अच्छा सब्र करूंगा, और जो बात तुम बना रहे हो इस पर अल्लाह ही से मदद मांगी जाती है। हम ऐसे वक्त में लोगों के पास शिकवे शिकायतें लेके आ जाते हैं, याद रखिए जब तक अल्लाह न चाहे कोई आपका मेरा गम दूर नहीं कर सकता, औलाद के गम हो या किसी और के गम, रोता बंदा किसी को अच्छा नहीं लगता, रोते बच्चे को भी लोग कहते माँ को दे, बच्चा हंसेगा प्यार करेगा सब उसको पकड़ेंगे, रोता बंदा रब के सामने रो ले, कभी लोगों को न बता, एक दिन लोग आपका दुख सुन लेंगे, दूसरे दिन सुन लेंगे, तीसरी तरफ नहीं। देखिए ना याकूब को कितने गम है, एक तरफ बेटे की जुदाई का गम, दूसरी तरफ बेटों के झूठ का गम, बेटों की इतनी बेदीनी का गम के भाई को मारने की कोशिश तक कर चुके हैं, और अमूमन बेटों से उम्मीदें ज्यादा होती हैं, और जब बेटों से गम मिलते हैं तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। ऐसे वक्त में किससे राब्ता करे, 70 माओ से ज्यादा प्यार करने वाली जात के और अपने रब के ऊपर ले, यही सारी बातें हमें समझ आती हैं। अल्लाह ताला पे बात करके बैठ गए। अब ये तो कहानी इधर थी, उधर क्या हुआ, उधर एक काफला आया और उसने अपने सक्के को पानी लाने के लिए भेजा, सक्के ने जो कुएं में डोल डाला तो यूसुफ को देखकर पुकार उठे, मुबारक हो यहां तो एक लड़का है। यहां भी जरा हाईलाइट कीजिए, बुशरा, या बुशरा हाजा गुलाम, आप में से किसी का नाम बुशरा है, किसी की बेटी का नाम बुशरा है, बहन का नाम बुशरा। देखिए ये किस टेक्स्ट में उतरा कि यूसुफ अलैहि सलाम को जब कुएं में से निकाला और एक खूबसूरत चमकता गोल मटोल बच्चा जितने भी साल का था वो वहां से निकल आया, तो वो काफले वाले उसको देख के खुश हो गए क्योंकि उस दौर में लोग बेचते थे गुलामों को, तो उसको लगा ये तो बड़ा कीमती बिकेगा, और उसने फौरन जाके उसको कहीं छुपा दिया, बस सर रूह भी दो, उन लोगों ने उसको माले तिजारत समझ कर छुपा दिया, हालांकि वो जो कुछ कर रहे थे अल्लाह ताला उससे बाखबर था। किसी ने कहा कि अगर किसी के बेटा ना हो रहा हो, बेटा ना बेटियां ही हो रही, अब ये खुदा के लिए मेरे नाम पे ना वजीफा लगा दीजिएगा, मैं आपको किसी की बात सुना रही हूं, इस आयत पे कि आपकी एक बेटी हुई, दूसरी, फिर तीसरी हो गई, कहते हैं उसका नाम बुशरा रख लो। क्यों? या बुशरा, बुशरा के बाद हाजा गुलाम, इसके बाद लड़का होगा। और ये तो मैंने खुद लोगों को देखा है कि लड़की या लड़के के बालों के पीछे वो सर्कल देखते थे, कहते थे इसका सर्कल इतना, अगला बेटा या बेटी है। ऐसी बातें पढ़ते हुए सुनते हुए अजीब लगती है, तो अल्लाह ताला पता नहीं क्या रिएक्शन देता होगा कि ये देखो बेवकूफियां कर रहे हैं। तो ऐसा कोई मामला नहीं था, लेकिन वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम की अब जिंदगी का दूसरा शौर है। यूसुफ मोहब्बतों से निकले, नफरत में पले। कैसे? बाप की मोहब्बत से जुदा हुए, भाइयों की नफरतों का शिकार होते हुए कुएं में डाल दिए गए। एक दौर खत्म, अब दूसरा खौर, अब एक तीसरा शुरू हो रहा है, इम्तिहान शुरू हो रहा है। और ये सबसे मुश्किल दौर था यूसुफ का। कैसे? फरमाया आखिरकार उन्होंने इसे थोड़ी सी कीमत पर चंद दिरहमों के बस बेच डाला, और उसकी कीमत के मामले में वो कुछ ज्यादा के उम्मीदवार भी तो ना थे। क्यों? गिरी पड़ी चीज की यही कदर होती है, उनको क्या पता ये यूसुफ कितना कीमती है। इसने इतना प्यारा ख्वाब देखा हुआ है, ये एक नबी की औलाद है, और हजरत यूसुफ को करीम बिन करीम बिन करीम कहते हैं। सबसे आला नसब दुनिया में अगर किसी का है तो वो यूसुफ का है। नबी के बेटे, नबी के पोते, फिर खुद नबी। अल्लाह ने उनको कितनी नेमतें दी, लेकिन बास दफा दुनिया में ऐसे ही होता है। अपने माँ बाप के घर की इतनी प्यारी लाडली बच्चियां, भाइयों की आंखों का तारा, माँ बाप का प्यार, ससुराल में जाती हैं तो फिर वो इसी तरह की बेकदर हो जाती हैं। याद रखिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे। जब आप अपनी बच्चियों को बड़े प्यार से बस कहीं भेजते हैं, कोई जरूरी नहीं कि उनके साथ आगे मोहब्बतों का मामला हो। माँ बाप के घर में मोहब्बतें ऐसे ही मिल जाती हैं, आगे जाके लेनी पड़ती हैं। यहाँ तो अल्लाह ने कुछ भी नहीं करेगी ना, तो माँ को प्यार ही आएगा। सब कुछ बहू कर भी देगी तो 7-10 दफा देखेगी, फिर सोचेगी कि इससे प्यार करूं ना करूं। तो बस दफा लोग हमारी कीमत नहीं पहचानते। आप अपने मुल्क शहर में बहुत कीमती होते हैं, लोग आपको जानते हैं। आप खाना काबा में जाएं, लोग आपके पाँव पे पाँव रख के चले जाते हैं, एक्सक्यूज मी भी नहीं कहते। किसी को क्या लगे आप कौन है और आप किस मुल्क के बड़े हैं और किसके छोटे हैं। तो लिहाजा जिंदगी के इस उतार चढ़ाव के लिए औलादों को तैयार करें, कहीं भी कोई हालात हो सकते हैं। अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम को इन रास्तों से गुजार कर ऐसे रास्तों पर लाना चाहते थे जहां वो इंसानियत के लिए नफामंद साबित हों, और मुश्किलात से गुजार कर जब तक किसी को ना लाए तब तक वो कभी उस रास्ते के तकाजों को पूरा नहीं करते। जैसे ये भी पता चलता है कि माले मुफ्त दिले बेरहम, जो चीज मुफ्त में मिलती है उसकी कदर नहीं होती। इसलिए मुझे तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि दीन की चीजें भी चाहे कोई $1 डाल के भी लेना, उसको पकड़ के ले जाता है। और अगर फ्री में कोई चीज मिलती है तो 10 देंगे तो बाद में 8 उसमें से उठा ले, लोग इधर उधर भूल जाते हैं। उन्हीं फ्लायर्स के पीछे लोग कुछ और लिख के वहीं छोड़ जाएंगे, कभी उन्हीं कागजों के अंदर वो कुछ पकौड़े समोसे लपेट के ले जाएंगे। तो चीज की वैल्यू को डिवैल्यू नहीं करना चाहिए। लेकिन याद रखिए कि यूसुफ में चूंकि खैर थी, अल्लाह ने उनको बड़े अच्छे हाथ में दिया। ये काफिला मिस्र से आया हुआ था। अब कहानी तो आप सुन ही चुके हैं ना, मिस्र कैसे पहुंचे? पहले शाम में थे, अब यहां से मिस्र पहुंच रहे हैं। मिस्र के एक शख्स ने खरीद लिया। अब वो शख्स क्या कहता है, ये यूसुफ की जिंदगी का अब दूसरा दौर है। इसको पूरा ही पढ़ते हैं ताकि फिर इसमें इकट्ठी बात करेंगे। मिस्र के जिस शख्स ने उनको खरीदा, उसने अपनी बीवी से कहा, इसको अच्छी तरह से रखना, बईद नहीं कि ये हमारे लिए नफामंद साबित हो और हम इसको बेटा ही बना लें। उम्र से यूसुफ उनसे बहुत छोटे थे। इसी तरह हमने यूसुफ के लिए सरजमीन में कदम जमाने की सूरत निकाल ली और इसे मामला फहमी की तालीम देने का इंतजाम किया। ये है असल में इस वक्त फिर हमारा नुकता उम्मत मुस्लिमा का। देखिए, यूसुफ फी जमाना क्या कहानी है। एक इस्लामी घराने से निकलकर उस दौर के एक बेदीन घराने में आ गए। बेदीन था ना, मुशरिक और गैर इस्लामी माहौल, और वजीर के घर में आ गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला इन मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर जो चीज दे रहे थे ना, वो मामला फहमी थी। जब तक जमाने के उतार चढ़ाव को नहीं देखेंगे तब तक आपके अंदर हिकमत नहीं आएगी। आपने एक बात अक्सर सुनी होगी लोगों से, और वो क्या है कि वेस्ट में पलने वाले बच्चे भोले होते हैं। इसके बरक्स जो अपने मुल्कों में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में पलते हैं, वो बच्चे बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। वजह क्या है? किस रंग में? कि उन्होंने वो सब फूफी खाला मामू की सियासत देखी होती है। अम्मा कहती, जाओ देखो दादी क्या कर रही है, जरा देखो फूफू क्या कर रही है, ये चचा की बेटी किधर आई है, जरा देखो। वो छोटी छोटी मुखबरियां करते हुए वो बच्चे अच्छे जासूस बन चुके होते हैं। वेस्ट में वो सिंगल फैमिली है, उनको तो अपने माँ बाप के भी होश नहीं पता होते, तो वेस्ट में पलने वाले बच्चे अक्सर भोले होते हैं। जब बच्चों को या बड़ों को, जिसको ज्यादा लोगों के साथ मामला करना पड़ता है, हिकमत आती है। आप अपने घर में बंद होके इबादत के नटशेल में बैठ जाए, आपको हिकमत नहीं आएगी। जिसको भी दीन का काम करना है उसको पीपल पर्सन बनना पड़ेगा। आज मुझे और आपको मते मुस्लिमा का हक अदा करना है ना, वी नीड टू मिक्स विद अदर डिफरेंट कल्चर, उनसे मिले, उससे खुले, किसी से सीखें, किसी को सिखाएं, उनका कल्चर लें। मैं एक सफर में थी, मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताऊंगी। जहाज में थी तो साथ जो सीट पे सिस्टर थी, तो बात करने में पता चला कि आइकिया, यहाँ आप आइकिया कहते हैं कि इकिया कहते हैं। मैं जिस मुल्क में गई उसका प्रोनाउंसिएशन फर्क है, लेकिन है ये हर मुल्क में है। यहाँ क्या बोलते हैं? आइकिया। में कहने लगी आई वर्क फॉर आइकिया, 60 की एज की होगी बूढ़ी, तो कहने लगी कि मैं क्या करती हूँ, किसी और मुल्क से आई, पता नहीं पुर्तगाल और किधर किसी मुस्लिम मुल्क के अंदर। कहती मेरा, कहते वैसे मैं काम उनके लिए करती हूँ लेकिन मैं उनको पैसे नहीं दिलवाती कुछ। मैंने कहा तुम क्या करती हो? कहती मैं सर्च करती हूँ। कैसे? अब आप समझिए। कहती मेरी जॉब क्या है कंपनी की तरफ से कि मुझे ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भेजते हैं, जैसे अभी वो किसी छोटे से मुल्क से होके आई थी, फिर मैं वहां कुछ अरसा रहती हूँ, फिर मुझे वहां जाकर उनके कल्चर को देख करके ये किस किस्म के बर्तन पसंद करते हैं, इनकी चॉइस क्या है, इनका स्टाइल क्या है, मैं उसको ऑब्जर्व करके आके वो पूरी रिपोर्ट अपनी कंपनी को देती हूँ, फिर वो नए बर्तन जब डिजाइन करते हैं तो उस कम्युनिटी को नजर में रखते हैं, फिर कहीं जाके मैं बिस्तरों को देखती हूँ कहीं को। इसको कहते हैं हिकमत। बड़ी कंपनियां ऐसी तो कामयाब नहीं होती, उनको पता है किस मुल्क के लोग किसे क्या, और फिर वो किस तरह डिस्प्ले पे रखते हैं चीजें, जिस कल्चर के लोगों का कोई त्यौहार आने वाला होता है ना, उन चीजों को सामने ले आते हैं। एक पूरी मार्केटिंग है। आज तो इसको बिजनेस मार्केटिंग के नाम पे आम किया। आज उम्मत मुस्लिमा को भी दूसरे लोगों से खुलना मिलना पड़ेगा। जो शख्स जितना ट्रेवल करे, जितने लोगों से मिले, उसको उतनी हिकमतें आएंगी। इसलिए कभी भी इस चीज की फिक्र ना करें कि हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उनके दिल में वो डाल दें। देखिए अब यहां तक हजरत यूसुफ अपने बाप से तालीम पूरी कर चुके हैं। आज की जुबान में होते तो अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो 6 कलमे भी ना आते, नमाज भी ना पूरी आई होती। 8, 9, 10 साल का बच्चा है, क्या सीखता है? यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप से पूरा दीन, ईमान, तकवा, स्पिरिचुअलिटी सीख चुके थे। अब आप देखिए जिस घर में जा रहे हैं, इतना बड़ा फितना उनके सामने आ रहा है, लेकिन यूसुफ को कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई माँ नहीं पास, कोई उस्ताद नहीं, कोई मौलवी साहब नहीं, कोई नहीं है जिनका मुंह डर होता है, लेकिन अपने ओन पे सर्वाइव करते हैं। क्यों? उनके अंदर तकवा है, उनके अंदर बाप की बचपन की तरबियत का असर है। आप और मैं, हम अपने बच्चों को अगर बचपन से ही सही तरीके से ट्रेन करना शुरू कर दें, यकीन करें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इनका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। शर्त यह कि इनको अंदर से मजबूत करें। जैसे किसी भी जगह जर्म्स आते हैं तो आपने अगर पहले से इम्यूनिटी ली हुई है और आपने अपने लिए सिक्योरिटीज ली हुई है तो नो प्रॉब्लम, नेट में से कितने मर्जी वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाए, लेकिन अगर आपने वायरस को जलाने वाली और काटने वाली चीजें डाली हुई है तो आपको फिक्र नहीं होती। तो इस वक्त अपने बच्चों को ये मैसेज दें, जाया ना करें। बिस्तरों पे बैठे ये कंप्यूटर फोन इनसे खेलने की बजाय बाहर निकले, लोगों से मिले, लोगों से घुले। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जवानी के साथ ही कुव्वत फैसला और इल्म दे दिया कि अल्लाह मेरे और आज आपके बच्चों और हमारी नस्लों को नहीं दे सकता। बिल्कुल दे सकता है। अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सबसे काट कर वहां रखा ताकि उनको वो सब दें। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं यही है जजा, वकज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम इसी तरह नेक लोगों को जजा देते हैं। तो कह लीजिए कि हिकमत और इल्म जजा है नेकी करने की। जितनी नेकियां करते जाएंगे ना उतनी ये जजा मिलती जाएगी। और यूसुफ अलैहिस्सलाम की अब बहुत बड़ी आजमाइश आ गई। याद रखिए कि जितनी बड़ी नेमत मिलती है ना उतनी बड़ी आजमाइश है। यूसुफ को हुसन बहुत मिला था और हुसन आजमाइश बन गया। कैसे? जिस औरत के घर में वो थे वो इस पर डोरे डालने लगी और एक रोज दरवाजे बंद करके बोली आ जा, गुनाह की दावत देती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह की पनाह, मेरे रब ने तो मुझे बड़ी अच्छी जगह दी और क्या मैं ये काम करूं? यहां से पता चला नमक हरामी नहीं करनी। ऐसे जालिम कभी फलाह नहीं पाते, वो इनकी तरफ भड़ी और यूसुफ भी उसकी तरफ भड़ जाते, अगर अपने रब की बुरहान न देख लेते। ऐसा हुआ ताकि हम इससे बदी और बेहयाई को दूर करें, दर हकीकत वो हमारे चुने हुए बंदों में से था। आखिरकार यूसुफ और वो आगे पीछे दरवाजे की तरफ भागे, इसने पीछे से यूसुफ का कमीज खींचकर फाड़ दिया। दरवाजे पर दोनों ने इसके शौहर को मौजूद पाया। इमेजिन कीजिए एक औरत इस हद तक बड़ी हुई है और दरवाजे पे और शौहर आ गया, और वक्त से पहले शौहर को आता देखकर घरों में जो कोहराम मचता है वो आपको तो पता ही है। खाना नहीं पका शौहर आगे घर में, पता चला कि एक तूफान आ जाएगा। लेकिन कितनी होशियार औरत है, कैसे पैंतरा बदलती है। कालत मा जजाउ मन अराद बि अहलिक सूअन, कहने लगी क्या सजा है इस शख्स की जो तेरी घरवाली पर नीयत खराब करे। इसके सिवा और कोई सजा हो नहीं सकती कि वो कैद किया जाए या इसे सख्त अजाब दिया जाए। अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रही है ही तलक, आओ कम टूवर्ड्स मी। लस्ट पे मबनी मोहब्बतें ऐसी होती हैं, एक तरफ आई लव यू, आई अडोर यू, आई मैं रह नहीं सकती, और जब देखा पकड़ी जाऊंगी, सारा इल्जाम यूसुफ पे डाल दिया। तो बाज बच्चे बच्चियां इस उम्र में मोहब्बत और लस्ट का फर्क नहीं कर पाते। जरा कोई मुस्कुरा के देखे कहते हैं बस इसको मुझसे प्यार है, जरा कोई तारीफ कर दे लड़कियां कहती इससे तो अच्छा कोई है ही नहीं है मेरी जिंदगी में। और बाद दफा इतनी प्यार से पाला हुआ माँ बाप का सब पीछे डालकर एक अजनबी के साथ जाने को तैयार है सिर्फ इसलिए कि ही लव्स मी, और उसमें कोई खूबी है कि नहीं है बस उसकी बातें हैं। तो याद रखिए इस उम्र की मोहब्बत में अमूमन लस्ट ज्यादा होती है, समझ तो इतनी होती नहीं है। लेकिन इस औरत ने अपने शौहर को ये कहने की यूसुफ को सजा देने की कोशिश की तो यूसुफ भी चुप नहीं रहे। यूसुफ ने कहा यही मुझे फांसने की कोशिश कर रही थी, क्या पता चला कि अपनी सफाई पेश करनी चाहिए, खामोश रहकर अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेना। इस औरत के अपने कुंबे वालों में से एक शख्स ने इस करीने की गवाही दी कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज आगे से फटा हो तो औरत सच्ची है और ये झूठ है। देखिए कितना विजडम है इसमें कि कैसे मुजरिम को पकड़ा जाए, कि जाहिर बात है कि अगर कमीज आगे से फटा है तो औरत अपना दिफा कर रही थी, और अगर इसका कमीज पीछे से फटा है तो औरत झूठी है, यानी फिर उस औरत में मर्द अपनी जान बचा रहा था, और ये सच है। जब शौहर ने देखा कि यूसुफ का कमीज पीछे से फटा है तो इसने कहा ये तुम औरतों की चल्लाकियां हैं, वाकई बड़े गजब की होती हैं तुम्हारी चालें। बस औरतें इस जुमले पे बड़ी नाराज हैं, अल्लाह ने ये क्यों कहा औरतें बड़ी चालबाज होती हैं, तो अल्लाह नहीं फरमा रहा ये उस औरत का शौहर बोल रहा है। और झूठ भी क्या, औरत जिस तरह मर्द की मत मारती है वल्लाही। हदीस में आता है मैंने अक्ल में ज्यादा होने के बावजूद किसी को अगर किसी के हाथों बेवकूफ बनते देखा है तो वो मर्द है। ये खुलासा है, यानी अक्लमंद मर्द बाहर बैठेगा इतनी इंटेलेक्चुअल बातें बॉस और सर और पता नहीं लोग उसको क्या कहते हैं, घर में बीवी के आगे बुद्धू बन जाते हैं, बेवकूफ बन जाते हैं। आप मुझे पता है दिल से कह रही है मेरे शौहर ऐसे नहीं है आप सब के, लेकिन आप में से किसी की बहू सास बैठी हो कहेंगी आप मेरा बेटा ऐसे ही है, तो ये तो होता ही है। लेकिन ये सच है, देखिए मैं भी औरत हूँ आप भी औरतें हैं, जितना मर्द औरत की बात मानते हैं ना उतनी औरतें उनकी नहीं मानती, सच है कि झूठ है। तो मर्दों की जिंदगी बड़ी मुश्किल है, आप माने ना माने मेरे इतने साल में व्यूज बदले नहीं है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं आपकी मर्दों से हमदर्दी है, हमने जो करना होता हम करा लेते हैं। तो बहरहाल वो उसके शौहर का फैसला था, तो आपको मुझे इस पे कुछ कहने की जरूरत नहीं। कहने लगा बड़े वाकई गजब की होती हैं तुम्हारी चाले यूसुफ, इस मामले से दरगुजर कर। देखिए यहां भी इसका वीक पॉइंट है, उसने इतना नॉन सीरियस लिया इस इश्यू को कैसे लगा कि जैसे शायद किसी ने चाय का कप तोड़ दिया। कहेंगे ओके यूसुफ डोंट वरी जस्ट इग्नोर इट, ए औरत तो अपने कसूर की माफी मांग, असल में तू ही असल खताकार है। हदीस में आता है कि वो शख्स जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा जिसने अपने घर वालों में कोई खराबी देखी और उस पर एक्शन ना लिया, यानी दयूस कहते हैं उसको। असल में यहां इस शौहर ने अपनी बीवी के जिना की मिसाल भी देख ली थी लेकिन उसने उसको नहीं छोड़ा या उस पर एक्शन नहीं लिया। अब इसकी सजा इसको पड़ेगी कि सारे शहर में इसके खिलाफ प्रोपेगंडा होगा। तो मर्दों को अपनी औरतों पर नजर रखने की जरूरत है, किस तरह से ये वह उधर देखिए कि याकूब अलैहिस्सलाम बेटों के हाथों मजबूर हो रहे थे तो यहां ये अपनी बीवी के हाथों मजबूर होता है। इसी तरह से आप देखिए कि आम हालात में इस तरह के मामला जो होते हैं वो छुपते नहीं है। और यहां से एक और बात भी पता चलती है कि जब अल्लाह सुबहान तआला इस किस्म के मामला हमारे सामने लाता है तो उनको सुनते वक्त हमें ये देखना है कि ये सारे अमल एकदम नहीं हुए। यूसुफ अलैहिस्सलाम का यहाँ किरदार हम अपने यंग बच्चों को दिखा सकते हैं, अमली नमूना है। एकदम ने गल्लकत, पहले दरवाजे बंद किए, फिर अटेम्प्ट किए, फिर जू मानी जुमले बोले। हालांकि आप देखिए फितरतन औरत पहल नहीं करती, आप फितरत में भी देखिए कि मेल हमेशा खूबसूरत होते हैं वो औरतों को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे मोर ज्यादा खूबसूरत होगा मोरनी से, तोता ज्यादा खूबसूरत है तोती से। औरतें अदाएं दिखाती हैं अपने आप को सजा संवार के करती, लेकिन कभी फर्स्ट पहल नहीं करती, उनकी अना और ईगो पे आती है। लेकिन जब किसी मुआशरे में इस तरह का डिक्लाइन आता है कि औरतें खुद मर्दों के पीछे पड़ जाएं तो ये जानवरों का मुआशरा बनता है। यही बात समझ आ गई कि ऐसी औरतें जहां खुद मर्दों के पीछे जाएं कि आप हमें तवज्जो दीजिए, तो ये वक्त मर्दों के लिए बहुत मुश्किल है। और हकीकत है कि हजरत यूसुफ का किरदार जहां आज वेस्ट में रहने वाले हर उस नेक बच्चे के लिए कि जिसने माशाल्लाह अपने आप को पाक रखा, नजरें बचा ली, दाढ़ी भी रख ली, कभी उन मर्दों से पूछिए, वो खुद अपने माओं को कहते हैं कि आप प्लीज हमारी शादी कर दें। बाहर इतना फितना और हम गुनाहों में नहीं पड़ सकते। यकीन करें कि आज का जो यूथ तबका है, अगर वो अपने आप को पाक साफ रख लेता है, बहुत दर्ज है उसका, क्योंकि चारों तरफ गुनाह के मौके बहुत सारे हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी इस बात को लेकर और वो सारे मामले को उन्होंने रफा दफा कर दिया। और अमूमन ऐसे ही होता है, ऐसे मक्तों में लोग घर वालों के अंदर बात डाल देते हैं, लेकिन बात कहाँ छुपती है। शहर की औरतें आपस में चर्चा करने लगी कि अजीज की बीवी अपने नौजवान गुलाम के पीछे पड़ी हुई है। इस पे नहीं कोई चर्चा के क्यों कर रही है, हैरत इस पे कि इसको गुलाम मिला। इमाम इब्ने कय्यिम ने इस आयत से 10 पॉइंट निकाले हैं कि उन्होंने इसको कितना जलील करना चाहा, कि देखो पहल की, फिर गुलाम की तरफ आई, फिर उसके पीछे चली गई, इसको कोई और नहीं मिला सरी गलती में। इससे पता चलता है कि ये किटी पार्टीज और ऐसी पार्टीज जहां लोग बैठते बातें करते और आदतें होती, वहां ऐसे ही किस्से चलते हैं, स्कैंडल्स बन गए। उस औरत का और वजीर की बीवी थी, स्कैंडल बनता भी ना। और गलती क्या की कि एक गुलाम को भी ना उठा सकी। और आप देखिए उस औरत का हाल क्या, कि नाकाम भी हुई तो नाम बदनाम भी हुई, काम भी ना कर सकी अपनी ख्वाहिश का, लेकिन बदनाम भी हो गई। और शौहर कौन सा था, लिबरल हस्बैंड, इट्स ओके चलो छोड़ दो। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करती थी, हजरत यूसुफ के किस्से के बारे में कहती हैं जो बात वो अगली आयतों के साथ सुनाती हूँ। औरतों के अंदर जब चर्चा हुआ कि अजीज की बीवी अपने नौजवान गुलाम के पीछे पड़ी हुई है, मोहब्बत ने इसको बेकाबू कर दिया है, हमारे नजदीक तो वो सरी गलती कर रही है, इसने जो इनकी मक्काराना बातें सुनी तो इनको बुलावा भेजा यानी इनवाइट किया, और इनके लिए तकियादार मजलिस आरास्ता की, और जियाफत में हर एक के आगे एक छुरी रख दी, फिर एन इस वक्त जबकि वो फल काट काट कर खा रही थी, इसने यूसुफ को इशारा किया कि इनके सामने निकला। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की निगाह इस पर पड़ी तो वो दंग रह गई और अपने हाथ काट बैठी और बेसाख्ता पुकार उठी, खाशा लिल्ला, ये शख्स इंसान नहीं है, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। अजीज की बीवी ने कहा, देख लिया, ये है वो शख्स जिसके मामले में तुम मुझ पर बातें बनाती थी। यानी देखिए कितनी ढिठाई है कि उनको कह रही है, तुम सब ने इतनों में इसको देखा है, तो मुझे सोचो, मैं तो उसके साथ एक घर में इतने साल से रह रही हूँ, यानी फिर मुझे तो कितना ही उसके ऊपर फरिश्ता ना होना पड़ेगा। जब जरूरत खत्म होती है, याद रखिए यहां से आपको उस मुआशरे में मिस्र का कल्चर दिखेगा, वापिस आज के दौर पे ले आइए। मिस्र उस दौर का एक वेस्टर्न कंट्री था, इजिप्शियन कल्चर बदनाम कल्चर था। जब किसी सोसाइटी में औरतें मर्दों से ज्यादा खुलने लगें, बेहया हो, मॉडर्न होने के नाम पर इंसानियत से गुजर जाए, अपने शौहर को कुछ समझने की बजाय दूसरे मर्दों के साथ ताल्लुकात हो, तो यही फितने पैदा होते हैं। उस शख्स ने अपनी बीवी की इस बात को इतना क्यों नहीं लिया हम, क्योंकि ये आम था, बल्कि कहते हैं कि हो सकता है उसके भी अपने कई मामले बिगड़े हों, कि जब परवर्टेड सोसाइटीज जहां अल्लाह को छोड़ दिया जाए तो वहां जिना जरूर आम होगा, लिहाजा वहां किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उस औरत ने तन्हाई में जिस काम का इरादा किया, उन औरतों ने उस महफिल में बैठकर उसी काम का इरादा कर लिया, बिगाड़ की हद है। क्या पता चला कि किसी सोसाइटी में इससे ज्यादा बिगाड़ क्या होगा कि मर्दों को पता चल भी जाए कि कसूर औरतों का, फिर भी वो उनको कैद ना कर सके। यहां भी ऐसे ही हुआ। ये सारी बातें करके जब वो सारे मामले खत्म हो गए तो अजीज की बीवी कहने लगी, देख लिया, ये है वो शख्स जिसके मामले में तुम मुझ पर बातें बनाती थी, हाँ बेशक मैंने इसे रिझाने की कोशिश की थी। इसको हाईलाइट करें, इकरारे जुर्म कर रही है, और अगर इस्लामी अदालत होती तो ये रजम कर दी जाती, खुद इकरार किया कि हाँ मैंने की थी ये कोशिश, मगर ये बच निकला। यहां से देखिए ऐसी पार्टीज में कितनी वल्गर टॉक हो रही है, जहां मॉडर्न होने के नाम पर औरतें एक दूसरे से इस तरह के जाती मामलात भी शेयर करती हुई दिख रही हैं, और कहने लगी ये बच निकला, अगर ये मेरा कहना ना माने तो कैद किया जाएगा और बहुत जलीलो ख्वार होगा। यूसुफ ने कहा है, मेरे रब, कैद मुझे मंजूर है, बनिस्बत इसके कि वो काम करूं जो ये लोग मुझसे चाहते हैं, और अगर तूने इनकी चालों को मुझसे दूर ना किया तो मैं तो इनके दाम में फंस जाऊंगा और जाहलों में शामिल होकर रहूंगा। इसके रब ने इसकी दुआ कबूल की। आप लोग सोचें, इस पे गौर करें किस सोसाइटी की ये कहानी है और कैसे ये मामलात हैं। आज के हालात आपको कुछ इससे मुख्तलिफ दिख रहे हैं? बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है। इसलिए याद रखिए कि आज के दौर में ये सूरतें पढ़ना, समझना और इसके ऊपर अपने ऊपर नजर रख लेना बहुत जरूरी है। तो लिहाजा हजरत यूसुफ ने अपने लिए कैद कबूल कर ली कि मुझे ये मॉडर्न स्टाइल नहीं चाहिए जिसमें औरतें मर्दों के पीछे भागे, और कहने लगी कि अल्लाह ताला तू मुझे इनसे दूर कर दे वरना मैं तो जाहलों में हो जाऊंगा। उसके रब ने उसकी दुआ कबूल की और इन औरतों की चाले इसे दफा की, बेशक वही सबको सुनता और जानता है। यहां से आप देखिए कि छोटा सा फिर अमल है हमारे लिए, आज के दौर में उसी मर्द की नजरें कायम रहेंगी जो अपनी नजरों को हया के साथ नीचे रखेगा, निकाह की डोरी होगी, और तीसरी चीज है नफिल रोजे। जब बाहर इतना गंदगी हो, इतना फितना हो, तो देखिए ये तो सिंपल सी बात है कि भूखे के सामने खाना हो और उसे के खा नहीं सकते, तो वो कहीं ना कहीं से तो चुरा ही लेगा ना। तो आज इस चीज का माँ बाप को बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। अगर हम मुस्लिम बच्चियां हैं तो हमें तो अपने ऊपर लेना है कि हमारे गेटअप, हमारे बाहर निकलने के अंदाज से कोई टेम्पटेड ना हो। लेकिन दूसरे ही बहुत सारे हैं, जब बाहर लिबास और हिजाब की सही पाबंदी नहीं होती तो याद रखिए ये करप्शन फैलती है। आप इस साल पूरे दौरे कुरान के बाद मुझे लगता है जिस नतीजे पे पहुंचेंगी वो यही होगा कि अंदर घरों की इसलाह से ज्यादा बाहर की इसलाह की जरूरत है, ताकि दूसरों को पता चले कि वी आर मुस्लिम। जब एक कपड़ों और ऐसे टाइट्स में और ऐसे लिबासों में बच्चियां बाहर दिखती हैं, तो आप ये तो सोचिए कि मर्दों के दिल पे क्या गुजरती होगी। और वो बेचारे जिनकी अभी शादियां नहीं हुई, जो अपनी इज्जत को बचाना चाहते हैं, क्या वो आपके इस हाल हुलिये से मजबूर होकर कोई गुनाह करना चाहते हैं? कल एक पिक्चर किसी ने भेजी थी, मैं शेयर भी नहीं कर सकती, जिसके अंदर यकीन करें कि फिगर्स लिखे हुए थे कि वेस्ट में रहने वाली यूथ का क्या हाल है। बस एक उसमें सुन लीजिए कि 57% यूथ, और मुस्लिम्स का था, नॉन मुस्लिम्स का नहीं था, कि वो 57% जो लोग हैं वो शादी से पहले वो सब काम कर चुके होते हैं जो के शादी के बाद होते हैं। जब बाहर इतनी गंदगी है तो वक्त से पहले शादियां करें। इधर आपको एहसास हो कि उनकी भूख जाग रही है, शादी करें। मत तालीम को उजर बनाए, मत करें, पढ़ेंगे खुद ही कदमों पे खड़े होंगे। वो तो 2 साल का अपने कदमों पे खड़ा हो गया था, आप कह रहे हैं अभी अपने कदमों पे नहीं खड़े हुए, अभी इसको जॉब मिल जाए, अभी ये पढ़ ले, तो आप उनको फितनों में डालें। क्या हम चाहते हैं हमारे बच्चे हराम करें, हमारे खानदानों में कोई ऐसी चीजें गंदी आ जाए? तो आज के दौर में अल्लाह के नबी के इस हुक्म पे उम्मत मुस्लिमा को अमल करने की जरूरत है कि जब आपके बच्चे बालिग हो जाएं तो उनके निकाह कर दें। जिस माशरे में जिना के तो इतने असबाब है, अब जिना तो लफ्ज ही छोटा लगता है, अब तो उसे आगे की मुसीबतें शुरू हो गई, वहां शादी को 18 साल तक डिले कर देना और उसके बाद फिर दूसरी बातें पीछे पड़ती हैं। तो लिहाजा हजरत यूसुफ ने फिर कहा मुझे कैद में कर दो, ना ये मुझे दिखे, ना ये मेरे पर नजर डाले और मैं अपने आप को पीछे कर लूं। इस पे हजरत आयशा अल्लाह के नबी को कहा करती थी कि अल्लाह के नबी, यूसुफ वालियों ने तो अपनी उंगलियां काटी थी यूसुफ को देख के, अगर वो आपको देखती तो अपने दिल काट लेती। और हकीकत है कि नबी सल्लम हजरत यूसुफ से भी ज्यादा खूबसूरत है। हमारे कल्चर में हजरत यूसुफ की खूबसूरती बहुत आम है ना, किस तरह खूबसूरत है, लेकिन आप पूरे कुरान में देखेंगे एक सेंटेंस भी नहीं है कि ही वॉज ब्यूटिफुल, ही वॉज प्रिटी। हर जगह मुहसिनी, अंदर का हुसन, खूबसूरती, जाहिरी खूबसूरती अल्लाह की तरफ से आती है, अंदर का हुसन आपने खुद पैदा करना होता है। लिहाजा हुआ क्या, फिर इन लोगों को ये सूझी कि एक मुद्दत के लिए इसको कैद कर दें, हालांकि वो इसकी पाक दामनी और खुद अपनी औरतों के बुरे अतवार की सरीख निशानियां देख चुके थे। क्या पता चला कि जिन मर्दों ने अपनी औरतों की खराबी देखने के बावजूद उसको छोड़कर यूसुफ को कैद कर दिया, तो ये बिगाड़ की हद थी। और यहाँ ये भी पता चलता है कि नेकी और तकवा खुद बोलता है, कहना नहीं पड़ता, बोल बोलकर ऐलान नहीं करना पड़ता। अब हुआ क्या, यूसुफ की जिंदगी का तीसरा दौर शुरू होता है। कैद खाने में 2 गुलाम भी इनके साथ दाखिल हुए। एक रोज इनमें से एक ने कहा मैंने ख्वाब देखा है मैं शराब कशीद कर रहा हूं, दूसरे ने कहा मैंने देखा है कि मेरे सर पर रोटियां रखी हुई हैं और परिंदे इनको खा रहे हैं। दोनों ने कहा हमें इसकी ताबीर बताइए, हम देखते हैं कि आप एक नेक आदमी हैं। हर जगह यूसुफ गए, बाप के घर कुएं में, फिर अजीज मिस्र के घर, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में। और जेल तो एक आखिरी हद होती है ना किसी इंसान के रहने की, हर जगह एक टाइटल मिल रहा है, इन्ना नरौका मिनल मुहसिनीन। ये टाइटल आज उम्मत मुस्लिमा को इक्वायर करना है। हम कहीं भी चले जाएं, लोग कहें यू आर गुड पीपल, यू आर मुहसिन, तुम कामों को अच्छा करते हो, तुम पूरी सूरत में यूसुफ के जाहरी हुसन का, आंखों का, कानों का जिक्र नहीं, लेकिन अंदर के हुसन का। आज कहते हैं प्रेगनेंसी में सूरह यूसुफ पढ़ो बच्चा खूबसूरत होगा, कभी सुना? मैं कहती हूँ आप अपने बदसूरत से बदसूरत बच्चे को सूरह यूसुफ पढ़ा दे और वो इस पे अमल कर लेगा, वो सबसे खूबसूरत हो जाएगा। ये सिर्फ हम लोगों का एक कॉम्प्लेक्स है कि हमें गोरे और चिट्टे रंग का बहुत शौक होता है, लेकिन याद रखिए कि असल खूबसूरती जो होती है वो अंदर की होती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल खाने में भी लोग मुहसिन कह रहे हैं, तो फिर आप सोच सकते हैं कि वो कितना पीपल पर्सन थे। और मुहसिन बनता ही वो है जिसके दिल में इंसानियत का दर्द होता है। लिहाजा ख्वाब देखने लगा, कहने लगा कि मुझे ख्वाब की ताबीर बताएं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को मौका मिला, यूसुफ ने कहा यहाँ जो खाना आपको मिलता है इसके आने से पहले इन ख्वाबों की ताबीर मैं आपको बताऊंगा, ये इन उलूम में से जो मेरे रब ने मुझे अता किए। देखिए डाउन टू अर्थ, बड़ाई नहीं की, हाँ हाँ बहुत सीखा, बहुत पढ़ा, उस स्कूल गया, उस कॉलेज में गया। और यहाँ एक सवाल करूंगी, किस यूनिवर्सिटी में गया यूसुफ, कौन सा उनके पास अवार्ड था? लेकिन फहम और फरासत कहाँ से मिली? अल्लाह के खौफ से मिली। जब अल्लाह का खौफ आएगा ना तो हमें हिकमतें भी मिलेंगी और फहम और फरासत भी मिल जाएंगी। और ये मिला कब, इसको हाईलाइट कीजिएगा। हजरत यूसुफ कहते इन्नी तरक तुम इल्लत कौम ला युमिनून बिल्ला, वाकया ये कि मैंने इन लोगों का तरीका छोड़कर जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखरत का इनकार करते हैं। यानी हिकमत कब मिली, जब खानदानों के तौर तरीके छोड़ दिए और अल्लाह को मान लिया, अपने बुजुर्गों इब्राहिम इसहाक और याकूब के तरीके को इख्तियार किया। हमारा ये काम नहीं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएं, दर हकीकत ये अल्लाह का फजल है हम पर और तमाम इंसानों पर, किसने अपने सिवा किसी का बंदा हमें नहीं बनाया। दुआ करें अल्लाह हमें सब के बंदे ना बनाए, रब के बंदे बना दे। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। ऐ कैद के साथियों तुम खुद ही सोचो कि बहुत से मुतफरिक रब बेहतर है या वो एक अल्लाह जो सब पर गालिब है। इसको छोड़कर तुम जिनकी बंदगी कर रहे हो इसके सिवा कुछ नहीं है, बस चंद नाम है जो तुमने और तुम्हारे अबाउ अजदाद ने रख लिए, अल्लाह ने इनके लिए कोई सनत नाजिल नहीं की। फरमा रवाई के इक्तदार अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं, इसका हुक्म है कि खुद उसके सिवा तुम किसी की बंदगी ना करो। ठीक यही सीधा तरीके जिंदगी है, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। ए कैद के साथी हो तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि तुम में से एक तो अपने बादशाह यानी शाह मिस्र को शराब पिलाएगा, रहा दूसरा तो इसे सूली पर चढ़ाया जाएगा और परिंदे इसका सर नोच नोच कर खाएंगे। फैसला हो गया इस बात का जो तुम पूछ रहे हो। क्या पता चला कि जब कैदियों को यूसुफ की जरूरत पड़ी तब उनको तबलीग की, और तबलीग में फिर देखिए नुकता वही है तौहीद का। तो यहां से पता चलता है कि आज उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ना करे कभी को जेल में भी डालते किसी इल्जाम में, वो वहां भी मुहसिन बन के लोगों को दुनिया की सबसे खूबसूरत दौलत शेयर करेगा। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको ख्वाब की ताबीर दी, बिल्कुल वैसा ही हुआ। दोनों में से जिसको यूसुफ ने कहा था आजाद हो जाएगा वो आजाद हुआ, फिर इनमें से जिसके मुतल्लिक था कि वो रहा हो जाएगा, इससे यूसुफ ने कहा अपने रब यानी शाह मिस्र से मेरा जिक्र करना। यूसुफ ने असबाब यूज किए लेकिन अल्लाह की तकदीर गालिब आ गई। कैसे? मगर शैतान ने इसे ऐसा गफलत में डाला कि वो अपने रब यानी शाह मिस्र से इसका जिक्र करना भूल गया और यूसुफ कई साल कैद खाने में पड़े रहे। सच्ची बात है, जितनी मर्जी कोशिश कर ले आपके बच्चों को कोई सदमा ना आए, गम ना आए, जो मिलना होता मिल जाता है। यूसुफ के नसीब में 7 साल की कैद थी, छोटी कैद नहीं है ये। अगर वो ख्वाब उसका जो बताया और उसको कहा कि बादशाह को बताना कि एक बेगुनाह कैदी पड़ा हुआ है, तो वो उसको आजाद करा सकता था, लेकिन अल्लाह ने जो तकलीफ देनी है वो देता है। पीछे पड़ चुके हैं यमसकल्लाहु बिदुर्रिन फला काशी फला, तो भी वक्त नहीं आया था, उस शख्स को भूल गया, लेकिन अब असबाब पैदा हो रहे हैं। कैसे? और आप देख रहे हैं इस पूरी कहानी में ख्वाबों का बड़ा जिक्र है और हकीकत है ख्वाब। ख्वाबों के बारे में लेक्चर मौजूद है कि ख्वाबों की हकीकत क्या होती है, ड्रीमिंग। लेकिन मैं तो इस वक्त ये कहूंगी कि बंद आंखों के ख्वाबों की बजाय खुली आंखों के ख्वाब देखने की जरूरत है। अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो ख्वाबों की हिकमत दी थी, कैसे उसकी ताबीर है। आज भी ऐसे साहिब फरासत लोग मौजूद हैं कि दुनिया के नक्शे को देख कर बता सकते हैं कि कल इसकी ताबीर क्या होगी। अल्लाह ताला हमें अच्छे अच्छे ख्वाब देखने वाला बना दे। एक रोज बादशाह ने कहा मैंने ख्वाब में देखा कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं और अनाज की 7 बालियां हरी हैं और दूसरी 7 सूखी हैं। अहले दरबार मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ अगर तुम ख्वाबों का मतलब समझते हो। लोगों ने कहा ये तो परेशान ख्वाबों की बातें हैं और हम इस तरह के ख्वाबों का मतलब नहीं जानते। इन दोनों कैदियों में से जो शख्स बच गया था इसे एक मुद्दत दराज के बाद अब बात याद आई और इसने कहा मैं आप हजरात को इसकी तावील बताता हूँ, जरा मुझे कैद खाने में यूसुफ के पास भेज दीजिए। यानी जब बादशाह को ख्वाब आया तो इनको याद आया कि मेरे ख्वाब की भी ताबीर एक शख्स ने दी थी, अब अपने मतलब के लिए यूसुफ के पास जा रहा है। अब जरा देखिएगा कि मोहसिन कौन होते हैं। इतने साल के बाद यूसुफ को दिखे और यूसुफ उनको कह चुके थे कि मेरी बात करना बादशाह से और वो भूल गए। इसके बावजूद उस कैदी को इतना यकीन था कि यूसुफ मुझे ताना नहीं देंगे कि अच्छा जी अब अपना काम पड़ा तो आगे। बल्कि आप देखिए इसने जाकर कहा यूसुफ है सरापाए रास्ती, मुझे इस ख्वाब का मतलब बताइए कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 बालियां हरी हैं और 7 सूखी हैं, शायद के मैं इन लोगों के पास वापस जाऊं और शायद के वो जान लें। यूसुफ ने कहा 7 बरस तक लगातार तुम खेती बाड़ी करते रहोगे, इस दौरान में जो फसलें तुम काटो इनमें से बस थोड़ा सा हिस्सा जो तुम्हारे खुराक के काम आए निकाल लो और बाकी को इनकी बालियों में रहने दो। फिर 7 बरस बहुत सख्त आएंगे, इस जमाने में ये सब गल्ला खा लिया जाएगा जो तुम इस वक्त के लिए जमा करोगे, अगर कुछ बचेगा तो बस वही जो कुछ तुमने महफूज कर रखा हो। इसके बाद फिर एक साल ऐसा आएगा जिसमें बारान रहमत से लोगों की फरियाद रसी की जाएगी और वो रस निचोड़ेंगे। क्या पता चला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ ये के ख्वाब की ताबीर बताई बल्कि तदबीर भी बताई कि उस कहत से कैसे बचना है, तो ये मुहसिन है। आज मुझे और आपको इस दर्जे का मुखलिस होने की जरूरत है। लोगों के खैर ख्वाह, लोग आपसे थोड़ी बात पूछे, आप उनको ज्यादा बताएं ताकि वो आपकी बात के ऊपर अमल करके आपका एहसानमंद हो सके। बादशाह ने जब इतनी जबरदस्त किस्म की ताबीर सुनी तो क्या कहा? बादशाह ने कहा इसे मेरे पास लाओ। जब बादशाह का कासिद यूसुफ के पास पहुंचा तो इसने कहा अपने रब के पास वापस जाओ और उससे पूछो कि इन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। या फिर देखिए, जिना की बात नहीं, गुना की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनके उस अमल की बात को ला रहे हैं। इससे पता चलता है कि ईमान वाला दूसरों को शर्मिंदा नहीं करता। और यूसुफ का यही हुसन हमें आज दिख रहा है कि जब हम दूसरों को शर्मिंदा करने की बजाय उनको साइड देंगे तो लोग हमारे ज्यादा करीब होंगे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो निकलने से इनकार कर दिया, बस कहा कि जरा उस मुकदमे को खुलवा कर देखें कि उसका क्या हुआ था। मेरा रब तो इनकी मक्कारी से वाकिफ ही है। इस पर बादशाह ने इन औरतों से पूछा तुम्हारा क्या तजुर्बा है इस वक्त का, जबकि उसने तुमने यूसुफ को रिझाने की कोशिश की। सब ने यक जुबान होकर कहा हाशा लिल्ला। हाशा लिल्ला ऐसी जैसे आज के दौर में हम कहते हैं सुबहान अल्लाह। मालिमना अलैहि मिन सू, हम तो उसके अंदर कोई बुराई नहीं पाते। अजीज की बीवी बोल उठी अब हक खुल चुका और मैं ही थी जिसने इसको फिसलाने की कोशिश की, बेशक वो बिल्कुल सच्चा था। नोट करिए इन जुमलों को। अगर आपके ऊपर इल्जाम लगे, जिंदगी में लगता है, प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाते हैं बहुत इल्जाम लगते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, नए नए रिश्ते जुड़ रहे होते हैं, वो आपको नहीं जानती, आप उनको नहीं जानती, अब क्या हुआ? आप सब्र कीजिए। अगर आप हक पे हैं ना, देखिए अगर उस दिन अजीज मिस्र के सामने मामला पूरा खत्म हो जाता तो सिर्फ अजीज मिस्र और वो औरत ही जानती कि यूसुफ सच्चे थे। वहां मामला खुला, उसके बाद सारी औरतों के बीच में उस औरत ने कहा कि हाँ मैंने इसको बहकाया था। आज पूरे दरबार में, पूरी पब्लिक के सामने, मीडिया पे आके औरत कह रही है, बल्कि सारी औरतें कह रही हैं कि हमने फैसला था। तो यूसुफ की बेगुनाही साबित हुई ना। तो जो लोग अपनी बेगुनाही में खुद नहीं बोलते, अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते खोल देता है। और जालिक लियालमा अन्नी लम अखुनु बिलगैब। और यूसुफ ने कहा इससे मेरी गरज ये थी कि अजीज से जान ले कि मैंने दर पर्दा इसकी खयानत नहीं की, और ये कि जो खयानत करते हैं इनकी चालों को अल्लाह कामयाबी की राह पर नहीं लगाता। और वह माउबर नफ्स इन नफ्स अलम्मारा तुम बिसू, और मैं अपने नफ्स की कुछ बरात भी नहीं कर रहा, नफ्स तो बदी पर उकसाता है, इल्ला ये कि किसी पर मेरे रब की रहमत हो, बेशक मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है। यहाँ पे यूसुफ का कलाम पूरा होता है। क्या पता चला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हुई और अल्लाह ताला ने सबके बीच में उनको रखा। इसके बावजूद उनकी आजजी की हद देखिए कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को पीछे डाल दिया। तो मेरे और आपके लिए इसमें बहुत सारे सबक हैं। अपने आप को सच्चा रखिए, हक पे रखिए, अल्लाह से मदद मांगिए, अल्लाह ताला खुद ब खुद आपके लिए रास्ते खोलेंगे। हालांकि पारा यहाँ पूरा होता है लेकिन बात नहीं पूरी हो रही, बात आगे चलती है, तो हम यहीं रुकेंगे इंशाल्लाह ताला। कल हम इसको पीछे से मिलाते हुए आगे लाएंगे। आप लोग ये कीजिए कि इसके ऊपर आप कुछ पॉइंट्स नोट करके लाएं कि कैसे हम इसको आज अपने हालात से रिलेट करके कोई एक ऐसी चेकलिस्ट बना लें कि ये हमने कर लिया, ये हमने नहीं किया, इंशाल्लाह ताला इससे फायदा होगा। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका वतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह।